بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے صلاح اور خیر اور خوبی کے اسباب مہیا کیے جائیں، یہ واقعتاً اس کی سعادت اور خوش بختی کی علامت ہے، اور ان اسباب و وسائل کو برتتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، اس سے پورے طور پر جو آدمی فائدہ اٹھائے اسی کو کہا جاتا ہے یہ موفق من اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق دی گئی. یعنی اللہ ہم کے جو اسباب ہو سکتے تھے دنیاوی اعتبار سے، وہ اسباب اس کو عطا فرمائے اور مزید بنا اس کو توفیق موقع دیا کہ وہ ان اسباب سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاوے. یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو جاتی ہیں اسی کو یوں کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کا انتخاب فرمایا، اور اس مدرسے کی شکل میں دور حاضر کے اعتبار سے جو اسباب و وسائل علم دین کے حاصل کرنے کے ہونے چاہیے، وہ اللہ نے اس مدرسے کی شکل میں آپ کے لیے سب مہیا کر دیے. حضرات اساتذہ، حضرات منتظمین، ان کی رہنمائی، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اور ان کی تربیت، بار بار وہ آپ پر نگرانی رکھتے ہوئے آپ کو متنبہ کرتے ہیں، راہ راست سے اگر ذرا بھی آپ ہٹنا چاہیں تو وہ پھر تنبیہ کر کے پھر سیدھا چلنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بڑا انعام ہے. دنیا میں ایسے بھی بہت سے بچے ہیں جن کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جن کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، جن کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تم کو کس طرح زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت میں یہ ساری چیزیں عطا فرما دی. یہ اللہ کا وہ عظیم انعام ہے کہ اس انعام کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. البتہ اس انعام کی قدردانی یہ ہے کہ آپ اس سے پورے طور پر فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیوں کو سنواریے. یہ مدرسے کی جو زندگی ہے اور آپ عمر کی جس منزل اور جس دور سے گزر رہے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہی آپ کے بننے اور بگڑنے کا زمانہ ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں کے پیٹ میں اس کے رحم بچہ دانی کے اندر بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور گویا نشو نما پاتا ہے، یہی دراصل اس کے بننے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں اگر اس کے اندر ہر طرح ساری خوبیاں پائی گئی، ہر عیب سے وہ پاک رہا، تو آئندہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گا. اور خدا نہ خواستہ اسی زمانے میں کوئی عیب اس کے اندر آ گیا، اس کا کوئی کان نہیں بنا، آنکھ نہیں بنی، ٹانگ نہیں بنی، کوئی عضو جیسا کہ بچے کا بننا چاہیے نہیں بنا، بلکہ اس میں نقص اور کمی اور عیب رہ گیا اور اسی طرح وہ پیدا ہوا، تو یہ ایک ایسا عیب ہے کہ اس عیب کو کوئی سدھار سکتا نہیں ہے. لوگ یوں کہیں گے ये तो कुदरती अपनी माँ के पेट से लेकर आया हुआ ऐब है, इसको अब सुधारा नहीं जा सकता। जैसे ये इमारत तामीर होती है ना, कंस्ट्रक्शन का जो ज़माना होता है, कंस्ट्रक्शन के ज़माने में, बनने के ज़माने में इमारत की छत जब बन रही थी, बनाने वाले कारीगरों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की और नतीजा ये हुआ कि उसमें ऐसा नुक्स रह गया कि जिसकी वजह से बारिश के ज़माने में उसमें से पानी टपकता है। अब अगर उसको ठीक करेंगे कोई बुला करके तो ठीक क्या होगा, चंद दिनों के लिए पानी टपकना बंद हो जाएगा, फिर टपकना शुरू होगा। लीपा पोती जिसको कहते हैं हमारी उर्दू ज़बान के अंदर, कि भाई एक तरह का जो है वक्ती तौर पर थोड़ा सा उसको रोकने की कोशिश होती है, वरना वो ऐप अपने अंदर बाकी है। ये कपड़ा मिल में तैयार होता है, कारखाने में, बनने के ज़माने में उसके अंदर कोई ऐब रह गया। तो आप तो जानते हैं जितनी भी कंपनियां हैं, कारखाने हैं, उनमें जो भी माल तैयार होता है, माल तैयार होने के बाद इंस्पेक्टर आने के बाद उसको जांचता है, कोई ऐब वाला होगा तो उसको निकाल देगा। और वो कंपनी अपने माल के तौर पर उसको सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, वो इसको वो गवारा नहीं करती कि इस माल की निस्बत हमारी तरफ की जाए, वो पहले से ही अलग कर देते हैं। जो माल उस कंपनी की शर्त के मुताबिक बना हुआ हो उसी को वो आगे बढ़ाते हैं, और जो ऐबदार हो गया उसको निकाल दिया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि बनने के ज़माने में जो ऐब रह गया वो ऐब फिर सुधरने वाला नहीं। आपका ये इल्म मदरसा जो है ना, उसको मादरे इल्मी कहते हैं, पता नहीं आपकी अंग्रेजी ज़बान में क्या कहते हैं। हमारे यहाँ मादरे इल्मी यानी गोया, एक तो हमारा जिस्मानी वजूद है, वो हमारी माँ के पेट में तैयार हुआ, वो हमारी हकीकी माँ है, जिस्मानी वजूद, और ये आपका इल्मी वजूद है, आपकी इल्मी शख्सियत तैयार होती है कहाँ, इस मदरसे के अंदर। तो ये मदरसा आपकी गोया इल्मी एतबार से माँ है, जहाँ आप बन रहे हैं, आपकी इल्मी शख्सियत इसमें नशोनुमा पा रही है शुरू से लेकर फारिग होने तक। तो इसमें इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, अखलाकी एतबार से ज़रूरत है कि आप हर मरहले पर ऐसी मेहनत करें कि आप में इल्मी एतबार से भी कोई कमी न रह जाए, अखलाकी एतबार से भी कोई कमी न रह जाए, अमली एतबार से भी कोई कमी न रह जाए, बल्कि हर एतबार से आप कामिल व मुकम्मल होकर यहाँ निकलें। आप में जो नुक्स और कमी रहेगी, इल्मी एतबार से रही, पढ़ने के ज़माने में इल्म नहव की जो किताबें आपने पढ़ी उसमें आपने जैसी मेहनत होनी चाहिए की नहीं, और आपकी नहव यानी आपका इल्म नहव कच्चा रह गया, बाद में अल्लाह ने आपको तौफीक दी, ऊपर के दर्जात में जाकर आपने ऐसी मेहनत की कि हदीस में, तफसीर में आपने आला नंबरात हासिल किए, लेकिन वो जो इल्म नहव में कमी रह गई है, हदीस और तफसीर के आला नंबरात से वो कमी पूरी होने वाली नहीं है। आप फारिग होने के बाद जब बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए भी बैठेंगे और वहाँ आपके तलबा आपका दर्स जब सुनेंगे तो वो खुले तौर पर महसूस करेंगे कि हमारे उस्ताद माशाल्लाह हदीस में, तफसीर में बड़े माहिर हैं, लेकिन नहव कुछ कच्ची मालूम होती है। वह आपकी इस कमी को महसूस करेंगे, हर चीज़ की, सर्फ में कमी है तो वो, और दूसरे फ़नून के अंदर कमी है वो कमी फिर सुधरने वाली नहीं है, वो बाकी रहेगी। अमली एतबार से आपके अंदर जो कमी रह गई, पढ़ने के ज़माने में आपने इल्मी एतबार से खूब मेहनत की, आला नंबरात लाए, अव्वल नंबर पास हुए, आखिर तक शुरू से लेकर आपकी इल्मी सलाहियत, इल्मी इस्तेदाद बेहतरीन बन गई, लेकिन अमली एतबार से आपने कोताही बरती, जमात के साथ नमाज पढ़ने के मामले में आप सुस्त रहे, काहिली बरती, फजर के वक्त गायब रहते हैं, जमात में शरीक नहीं होते, और आपकी जमात छूटती है, सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते। अब आप फारिग हो गए, तो फारिग होने के अब तालिब इल्मी के ज़माने में अमली एतबार से अपने आप को जैसा आपको बनाना था आपने बनाया नहीं, कमी रह गई, तो आपकी ये इल्मी सलाहियत और इस्तेदाद बहुत आला, और इस इल्मी सलाहियत और इस्तेदाद के आला होने की वजह से किसी भी तालीमी इदारे में, किसी भी दारुलूम में, किसी भी मदरसे में आप जाएंगे तो आपकी इस इल्मी इस्तेदाद की वजह से आपको ऊंची किताबें पढ़ाने के लिए मिलेगी, लेकिन चूंकि आपने अमली एतबार से सुस्ती बरती थी, कोताही बरती थी, तो ऊंची किताबें पढ़ाने के बावजूद उस ज़माने में भी आप जमात से नमाज पढ़ने का वो अहतमाम कर नहीं पाएंगे, बल्कि आपकी जमात छूटेगी, आपकी रकातें जाएगी, सुन्नतों पर अमल के मामले में आप में कोताही पाई जाएगी। आपके शागिर्द आपस में, आपसे तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन आपस में यूँ कहेंगे, हमारे उस्ताद माशाल्लाह इल्मी एतबार से बहुत गुंडा हैं, लेकिन जमात के अंदर सुस्ती करते हैं, और आपकी ये कोताही और कमी उनके दिल में आपकी जो अजमत और मोहब्बत का जो मैयार होना चाहिए उसमें कमी का बाइस होगी, और यही कमी आपके फैज़ के उन तक पहुँचने के मामले में क्या बनेगी, रुकावट बनेगी। गोया हमारे फैज़ को महदूद करने और कम करने का जरिया भी हम ही बने। इसी तरह अखलाकी एतबार से, अखलाकी एतबार से आपने, आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, कोई बुरी आदत आपके अंदर पड़ गई, आप जो है सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, या कोई और बुरी आदत, औरतों के साथ खलत मदत रखते हैं, बेरिश लड़कों के साथ खलत मदत रखते हैं, और ये आदत पढ़ने के ज़माने में पड़ गई, फारिग होने के बाद भी ये बीमारी जाने वाली नहीं है, बल्कि ये और ज़्यादा जो है ना, पता नहीं किस किस की जिंदगियों के लिए मुसीबत बन जाएगी और ख़राब करने का बाइस बनेगी। तो हकीकत तो ये है कि आपको यहाँ रहने के ज़माने में अपने ऊपर पूरी निगरानी करने की ज़रूरत है, अपने आप को पूरे तौर पर संभालने की ज़रूरत है, इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, अखलाकी एतबार से, और इस सिलसिले में आपके असातिज़ा, आपके मुंतज़िमीन बाकायदा, इन्होंने आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है, वो आपकी इन चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं और आपके अंदर जो नुक्स होता है वो आपको मुतवज्जे करते हैं, लेकिन आप अपनी गफलत की वजह से उनकी उन हिदायतों और उनकी उन तंबीहों को खातिर में लाते नहीं, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह बाद मरतबा तो तलबा यूँ समझते हैं, ये हमारे मोहतरमीन साहब हैं, हमारे नाज़िम साहब हैं, हमारे उस्ताद साहब हैं, जो हमको टोकते हैं वो अपने आप तलबा क्या समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाह ये हमारे दुश्मन हैं। कहाँ से दुश्मन होते भाई, ये तो आपके खैरख्वाह हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपके मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं, आपको अखलाक और अमल और इल्म के आला मेयार पर देखना चाहते हैं, इसलिए आपको वो टोक रहे हैं, दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो वो लोग हैं जो आपको इन बुराइयों में आगे बढ़ने का और आपके असातिज़ा और मुंतज़िमीन से आपको बदगुमान करके उनसे दूर करने का काम करते हैं। देखो जो आदमी इतनी समझ न रखता हो कि उससे ये पहचान पाए कि मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है, आपको अल्लाह ने अकल दी है, आपको ये तय करने की ज़रूरत है। जो लोग आपको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, आज़ादी का रास्ता दिखला रहे हैं, आपको जो है खुली छूट देने की बात कर रहे हैं, आपका जहन बिगाड़ रहे हैं कि मदरसे वाले ये कानून गलत है, ये तो आप पर बड़ी पाबंदी लगाई गई है, ये कहने वाले आपके दुश्मन हैं, वो दुश्मन ये असातिज़ा मदरसे वाले दुश्मन नहीं, ये तो दोस्त हैं। अभी जो है ना कुछ आपको पाबंदी, इसलिए कि तरबियत के अंदर और आपको जो ठीक करना है उसके लिए पाबंदियाँ ज़रूरी। एक बीमार आदमी होता है, उसका जब ऑपरेशन कराया जाएगा तो ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाएंगे उसका ये लिबास भी क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं और दूसरा लिबास पहनाया जाता है, और अगर आँख का ऑपरेशन करना है तो पलकें भी काट देंगे, भवें भी काट देंगे, और सीने का कल्ब का ऑपरेशन करना है तो यहाँ के बाल भी ये कर देंगे। वहाँ कोई बोलता नहीं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये मेरे साथ बालों की, ये तो मेरी जीनत है, ये पलकें तो ये जीनत क्यों उतारे, भाई तेरा इलाज हो रहा है, इसके बगैर ये इलाज होने वाला नहीं है, तो वहाँ सब बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तरबियत के मामले में जो बातें कही जाती हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते, उसको बुरा समझते हैं, और हमारे असातिज़ा, हमारे मुंतज़िमीन, हमारे मुरब्बियों की इन तंबीहात को, उनके टोकने को अपने लिए गोया यूँ समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाह के ये दुश्मन हैं, ये नादानी की बात है। आप इनके इन एहसान को, ये कब पता चलेगा आपको इनकी इस टोकने के अच्छे होने का, जब आप यहाँ से जाएंगे और अपने दीन के मैदान में काम करेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा, उस वक्त जो है ना सुधरने का मौका नहीं होगा। हमारे पढ़ हमारे यहाँ भी बहुत हमारी जो है तंबीहात की वजह से बहुत से तलबा उस वक्त हम बुरे लगते थे, लेकिन आज जब वो मिलते हैं तो हमसे चिमट जाते हैं कि आपने सख्ती की, बहुत अच्छा किया, अगर वो सख्ती न होती तो आज हम ये काम नहीं कर सकते थे। आज दुआएं देते हैं, जिनके साथ भी सख्ती की गई थी वो इतनी मोहब्बत करता है, मुझे तो ताज्जुब होता है कि भाई मैंने तो इसके साथ इतनी सख्ती की थी कि ये मेरा मुंह भी न देखता, लेकिन वो बजाय वह मेरे पाँव पर पड़ने की बात करता है। क्यों? इसलिए कि वो समझता है कि वो सख्ती मेरे लिए खैर थी और उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए आप जो है ना इन चीज़ों को समझिए और अल्लाह ने जो मौका दिया है इससे फ़ायदा उठाइए तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बनेगी, वरना खुदा न खास्ता ये मौका आपने ज़ाय कर दिया तो ये मौका दूसरी मरतबा ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। ये तो हर चीज़ पूरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दौर हैं। अब ज़ाहिर है बच्चा पैदा होता है, दूध पीने का ज़माना होता है, तो दूध पीने का ज़माना अब तो दोबारा आने वाला नहीं है। आप तमन्ना करें काश वो ज़माना मुझे मिल जाए, कहाँ मिलेगा, वो तो गया। इस तरह उसके बाद का दौर जिससे हम गुजर चुके हैं, जो दौर गुजरा गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। उस दौर के जो तकाजे हैं उसी ज़माने में पूरे करने हैं। अल्लाह ताला जिनको तरक्की देना चाहते हैं, जिनको नवाजना चाहते हैं, हर दौर में उस दौर के तकाजों को समझने और उसको पूरा करने की अल्लाह उसको तौफीक अता फरमाते हैं। और ऐसे लोग मुवफ़क़ मिन अल्लाह कहलाते हैं और ऐसे ही लोग हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला दीन का काम लेते हैं। आपको चाहिए कि आप भी ऐसा बनने की कोशिश करें और उसके बनने का तरीक़ा यही है कि आपको इस सिलसिले में जो हिदायतें दी जाएँ, जो आपको इसकी रहनुमाई डायरेक्शन दिया जाए उसके मुताबिक चलें, अल्लाह से दुआओं का अहतमाम भी करें, अपना निज़ाम दुरुस्त बनाएं, गलत सोहबतों से गलत माहौल से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। इसलिए कि ये गलत सोहबतें और गलत माहौल ऐसा नहीं कि मदरसे में नहीं मिलेगा, नहीं, यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं और जो इसके पल्ले पड़ जाते हैं वो ख़राब हो जाता है। हर जगह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आप यूँ समझते होंगे बाज़ार के अंदर बुरे ही बुरे हैं, नहीं, वहाँ भी अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि वहाँ दोनों किस्में साथ चलती हैं, दोनों राहें आदमी के लिए खुली हुई होती हैं। अल्लाह की तरफ से जिसके तौफीक मुकद्दर होती है वहाँ उसको हर जगह अच्छा ही अच्छा नज़र मिलता है, और जो गया महरूमुल किस्मत होता है वो दूसरी राह पर चल पड़ता है। तो बहरहाल ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने आपको जो मौका दिया है इस मौके से आप पूरे तौर पर फ़ायदा उठाइए, अपना एक निज़ाम तरतीब दीजिए, आपका कोई वक्त ज़ाया और बर्बाद नहीं होना चाहिए। असबाक की पाबंदी, तकरार और मुताले की पाबंदी, नमाज बाजमात की पाबंदी, कुरान की तिलावत का अहतमाम और जो है सुन्नतों का अहतमाम, अपने साथियों के साथ मोहब्बत और जो है अखलाक से पेश आना, अपने असातिज़ा का अदब व एहतराम, उनकी खिदमत, उनसे जो हिदायतें आपको मिले उस पर अमल करना, यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे जाकर तरक्की की राह पर लगा सकती हैं। उनका अल्लाह ताला आपको एहतमाम करने की अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।